रोती हैं तो वो झूठ मूठ के लिए रोती हैं, किंतु मेरी बहन की जब शादी हो, जब घर जाने लगी और रोने लगी, तो ठीक महाराज जनक जैसे है? महाराज जनक एकदम तत्व ज्ञानी है, संसार से एकदम निवृत्त है, पूर्ण वैराग्यवान है। और सीता जी पिताजी के गले में हाथ डालकर के जब रोने लगी पिता पिताजी, वो भी रोने लगे। तो हम लोगों की साधारण लोगों की तो बात क्या, बद्ध जीवन की। तो जाकर के जब पकड़ करके रोने लगी तो उस समय में बस रहा नहीं जाए। तो वो समझ सकता है या समझ सकती है जिसके अंदर में भ्रातृ और बहन का प्रेम है, वो समझ सकती है। आजकल यही प्रेम तो संसार से चला जा रहा है, भैया को पकड़ करके और रोने लगी। और सिद्धाम जी ये तो जोर जोर से बोल करके रो रही हैं, और सिद्धाम भैया क्या कर रहे हैं, और सांत्वना देने के शब्द उनको नहीं है, सांत्वना देने के भी शब्द बहुत विलंब हो गया है ना, इसलिए चुप भी नहीं करा रहे हैं। और वो डकर करके रो रही है, और इनके आंखों से भी आंसू बर रहे हैं। और उस समय में सावन का रिमझिम वर्षा भी बह रहा है, उनका दुख देख करके मानो वो भी पिघल करके वो रो रहा है। थोड़ी देर के बाद में रोते रोते फिर शांत हो गई, भैया से उन्होंने उलाहना दिया, ये तुम बहन को भूल गए, तुम आए नहीं, ये नहीं बहन ऐसी बात नहीं, किसी काम में था, इसलिए काम में लगने के वजह से विलंब हो गया, आना तो था ही किंतु विलंब हो गया। मैया और पिताजी भी तुम्हारे लिए विलंब के लिए बड़े दुखी हैं, अभी तुमको बुला रहे हैं, अभी चलो तैयार हो जाओ। बड़ी खुश हो गई, चलो किंतु जाएंगी कैसे, सास से आदेश तो लेना पड़ेगा, आज की लड़कियां तो हैं नहीं जो सास से नहीं पूछा चल दिया, जहां कभी रात में 9 बजे निकल गई, 12 बजे निकल गई, कभी इधर में निकल गई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घर में बच्चों को भी जरूरत नहीं है। पहले एक अनुशासन था मठ मंदिरों में ब्रह्मचारियों का, कहीं जाएंगे तो पूछ पाछ करके, आजकल वहां पर भी अनुशासन नहीं, कोई समझते हैं कि हमारे लिए कौन बैठा रहेगा पूछने के लिए, पहले ऐसा नहीं, जा करके बोले जे पिताजी ने कहा है, जे बहन को ले आओ, आप आदेश दें तो बहन को ले जाओ। कह जी हमारे घर में कौन रखा है, हमारे घर में तो और कोई है नहीं, हमारे घर में भी तो झूले पड़ेंगे, कितने काम करने, रसोई बनाना है और कितना काम, वो जाने के लिए मना कर दिया। मना कर दिया तो राधिका जी की दशा जो अब कुछ छड़ी से प्रफुल्लित हो गई थी, अब उनकी दशा क्या होगी, उनका मुख मैला हो गया, हृदय भी भर गया, सुजी जी ये जाने नहीं देंगे, बड़ी दुखी हो गई। श्रीधाम भैया जानते थे और उनके पिताजी जानते हैं जैसे ये कैसे आदेश लिया जाएगा, तो उन्होंने पिटारी खोली और पिटारी से अच्छे अच्छे कपड़े अलंकार और ये सब जे ये मैया ने आपके लिए भेजा है, समझी है ना, तो संविधान के लिए उन्होंने भेज दिया है, उसको देते ही वो बस। अरे अच्छा कल ही इसको लौटा देना यहाँ, अच्छा अभी कल तो नहीं, 2-4 दिन रहेगी, नहीं नहीं ऐसा मत करना, जल्दी से उसको भेज देना, हमारे घर में लिवाने के लिए कोई नहीं है, तुम ही लोग आकर के दे जाना। अच्छा ये जटिला है ना, ये विधवा है कि सधवा है, क्या है, क्या है, इसका पति भी है, उसका नाम कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है उसका नाम भी। वो कहा था वो गड़बड़ था। कल हमने देखा राधा गणोदेश दीपिका, उसमें देखा तो उसमें लिखा कि उसके पति थे, तो वो पति का नाम है, और पति जीवित थे कि नहीं ये उसमें नहीं, पति का नाम है उनका। तो उन्हें हामी भर दी, और इनको छकड़ा होता है ना, बहुत सुंदर अच्छे अच्छे बैल लगे हुए हैं, नौ अभी नवीन बैल, और अच्छी गाड़ी सजी हुई है, रत्नों से सजी हुई है, जुआ भी सोने के लगे हुए हैं, और रेशम से उड़ाए गए, और उसमें छतरी बनी हुई है गाड़ी के ऊपर, और उसमें बैठा करके जब सीमा में प्रवेश किया तो न जाने क्यों रोने लगी। क्यों रोने लगी? ये दुख से रो रही है ना आनंद से रो रही है? आनंद से भी और दुख भी। हाँ तुम लोग जानती होगी। जहाँ यहाँ सीमा पर पहुंची बस बाबा बाबा कह कह कर रोने लगी, और मैया मैया डकर डकर कर रोने लगी। और इतने में गांव घर की आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं और लोग हैं सब निकल करके आए, स्वागत किया, उस लाली से मिले, लाली और रोने लगी, वो भी रोने लग गए, घर में ले गए, सब लोग मिले जुले। इसके बाद में लाली अब आनंदित हुई, मैया मेरा झूला लग गया, मेरा झूला कहाँ है? तो मैया ने पहले से ये झूला तैयार करके रखा है। घर के पीछे बगीचा है, और बगीचे में तमाल के पेड़ हैं, कदम्ब के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, कोयल कुहक रही है उसमें, मोर भी नाच रहे हैं, हिरण इत्यादि वहाँ पर, अत्यंत सुंदर दृश्य। ये कहाँ है? गह्वर वन, घर के पीछे ही गह्वर वन है, और उसी में झूला सखियों ने डाल। मैया ने उनके लिए नए अच्छे अच्छे कपड़े जो उनके लिए जो बनाए थे, अच्छे से अच्छे उन्होंने सब उसको पहनाया, और सखियों के साथ में गह्वर वन में जाकर के ये झूला के लिए प्रस्तुत हुई। सब सखियां भी ललिता विशाखा सब जुट गई। झूला भी सुंदर लगा है, किंतु झूलाने वाला कोई नहीं। इतने में कोई सखी पीछे से श्यामा सखी को लेकर आई, पुरुष रूप में तो आ नहीं सकते स्पष्ट रूप से, इसलिए सखी सज करके सुबल ने सखी सजा दिया। दूसरे रास्ते से पिछवाड़े से गह्वर बन के इधर इधर से हम लोग परिक्रमा जाते हैं, उधर से गह्वर बन में पहुंचे। पहले तो नहीं समझ सकी लोग, तो पीछे से हाव भाव और स्पर्श से उन लोगों ने समझा ये श्याम ही। फिर तो झूला बड़ी तेजी के साथ में झूलने लगा, सखियां झूलाने लगे, कभी कृष्ण झूला रहे हैं। इस प्रकार से ये सावन का आज का दिन, वो लीला कब होती है? जब राधा जी बछड़े को लेकर के अक्षति बसंत पंचमी, तो ऐसे ऐसे दोनों का मिलन और झूलन होता है। और जगह लोग झूलते हैं किंतु ब्रज का भाव लेकर के नहीं, जहाँ वहाँ पर झूलते हैं वहाँ पर राधा और कृष्ण संबंधी गान होते हैं यहाँ, और ठीक वही भाव लेकर के यहाँ पर ब्रज में है। नन्नूमल जी आए हैं, झूला में भी ट्रिक होता है, झूले पर बैठे हैं, झूलाने वाला कोई नहीं है, किंतु झूला अपने आप झूले बैलेंस से, जैसे वो कसरत करते हैं ना, वो क्या दम, ऐसे ही झूला पर कृष्ण बैठे हैं। दो पीढ़ियां हैं, कोई किसी में एक पीढ़ी होती है सोने का लगा हुआ, झूलने के लिए एक पट्टी होती है, और कभी दो पट्टी होती है जुड़ी हुई आमने सामने। तो एक पर श्याम बैठे हैं, एक पर श्यामा जी बैठे हैं, और कभी कभी एक ही पट्टी होती है तो उसी पर दोनों बैठे हैं। कृष्ण उस पर खड़े हैं और बैलेंस ऐसे किया जो धीरे 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 एकदम ऊपर जाने लगा नीचे। जिस समय इधर चलता है तो राधा जी ऊपर, कृष्ण नीचे हो जाते हैं ऊपर में जाने पर। जब इधर से झूल करके जाता है तो इधर में कृष्ण ऊपर हो जाते हैं, राधा जी नीचे हो जाते हैं। राधा जी तो शक्ति हैं, लादनी शक्ति हैं, अचिंत शक्तिमान है, ये बात तो ठीक है। कृष्ण झूला भी रहे हैं राधा जी की शक्ति से, किंतु फिर भी उनकी क्या बात। ब्रज के लता गुल्म तृण भी सच्चिदानंदमय और शक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, सबको कुछ बर देने में भी समर्थ है, किंतु अपने स्वभाव को वो और शक्ति को वो विकास नहीं करते। तृण तो तृण जैसा ही पड़ा है, फूल है तो फूल ही जैसा लग, गाय है तो गाय ही जैसा है। कोई सर्वशक्तिमत्ता या सच्चिदानंद रूप या सब कुछ देने की सामर्थ्य को वो सब प्रकाश नहीं करते, तो राधा जी कैसे प्रकाश कर देंगे। इसलिए वह सहमी सी डरी हुई सी कृष्ण को ही पकड़ लेती हैं। कृष्ण इच्छा करने पर भी जो उनको स्पर्श नहीं करती, आज मानो डर करके उस झूले में उनको ऐसे जोर से आंकू पांकू कस लिए। क्या उन्होंने गाया ना, अंगू पंगू, अंगू पंगू माने क्या, अंग से उसी अंग को, ना पैर से पैर को, हाथ से हाथ से, सबको उन्होंने ऐसे पकड़ लिए मानो एक हो गए। ये झूला में ही संभव है, दूसरी लीला में ये संभव सब संभव नहीं है। इसलिए ये ब्रज में या कृष्ण के समय में झूला का ये महत्व है। जो कृष्ण हजार चेष्टा के द्वारा में जिन चीज़ों को, जिन भावों को नहीं पा सकते, इसमें उस भावों को आसानी से सहज रूप में ही, यहाँ तक कि गिड़गिड़ाने लगती हैं या बंद करो तो और भी जोर से चलाते हैं। ऐसे कभी सखियाँ ललिता विशाखा जी दोनों तरफ में हो करके और उसको कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी कृष्ण राधा जी उतर जाती हैं उनके बदले में, उनके साथ में ललिता जी को विशाखा जी को सबको वो बैठा करके। इस प्रकार से ये बरसाने में राधा कुंड में, नंदगांव में, ब्रज के सब सर्वत्र ही, वृंदावन में भी पिंडोले का ये सब उल्लेख है। एक अविच्छेद अंग है कृष्ण की लीला का, विशेष करके रासलीला में भी इसका सुना जाता है, उसमें भी कोई भी ऐसी लीला में इसका भी। इसलिए ब्रज में इतना इस लीला का प्रचलन। एक और बोलो तो तुम, जो अभी गाया था,
झूलन पधारो झुके आए बदरा,
झूला न पधारो।
तो परम सयानी वृषभान की लली, तुम तो
परम सयानी वृषभान की लली।
हाँ तुम तो परम सयानी वृषभान की लली, तुम तो परम राधे झूला न पाधार झुके आए बदरा, राधे झूला न
पाधार
झुके आए बदरा, गिरी आए बदरा झुके आए
बदरा,
राधे झूला न पाधार पंच रंग सारी और श्याम चदरा, पर
पंच रंग जहाँ पग धरो श्याम ने ना धरो, राधे जहाँ पग धरो
ओ राधे झूला न पधार झुके आए बदरा, राधे झूला न ओ राधे राधे झूला न पधार झुके आए बदरा, राधे झूला न आज झुके आए बदरा, गिरी आए बदरा झुके आए
बदरा,
राधे झूला न पधार झुके आए बदरा, राधे
पद का भाव आप लोग समझते हैं कि नहीं? वर्षा श्रावण की अभी होने वाली अभी हुई नहीं, काले काले मेघ आकाश मंडल में छा रहे, मानो अभी वर्षा होने वाली, अभी वर्षा होने वाली। श्रीमती जी श्यामा जी गहवर वन में झूला वहां पर लगा हुआ है और ये कुछ फूलों को लेकर पुष्पों को लेकर माला गूंथ रही है, माला गूंथ रही है। श्याम उधर से आए खड़े हैं, आध घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, वो ऊपर देखती ही नहीं। ललिता विशाखा जी सभी खड़ी हैं, आज इनको क्या हो गया, माला गुथना भी नहीं चल रहा, उल्टा सुल्टा माना फूल सफेद तो सफेद ही काट रहे, किंतु उनके तरफ में देख नहीं रही। काले काले मेघ अब जोर से भयंकर वर्षा होने वाली और श्याम खड़े हैं और सब सखियां प्रतीक्षा में जी, अब ये उठें और झूले पर चलें। श्याम कह रहे हैं किंतु उनकी सुन नहीं रही। तब ललिता जी कह रहे हैं तुम्हें आज क्या हो गया, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे लिए खड़ा है बाट जोरा, अभी झूलन पधारो। यदि खूब जोर से वर्षा हुई मूसलाधार तो फिर क्या होगा, झूला झूलेगा? ये तो रिमझिम में ही थोड़े थोड़े दो एक बूंदियां पड़ रही हैं, उसी में संभव है। इसलिए जल्दी उठिए, मान न करें। आपका मान कैसा है, इतना भयंकर? आप हैं तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी है ना। आपका शरीर कैसा है, दुबला पतला छोटा सा, और मान कितना बड़ा भारी, त्रि जगत का मानो मान इसी के अंदर में ने जाने कैसे समा गया। एक घड़े के अंदर में विश्व का जितना समुद्र है मानो उसी में आ गया। उठती क्यों नहीं है, किंतु आज मान ना करो, अभी आने इसमें मान मत करो, आप तो भोली भाली हैं, जल्दी उठिए प्रस्तुत होइए और झूला में चढ़ो, करो सोलह श्रृंगार। सोलह श्रृंगार को कीजिए, अब हम लोग कर रहे हैं, मान लें कि करते भी हैं तो क्या करती हैं, उनका मन अपने वशीभूत नहीं है, आनंद हो रहा है ना। आनंद किसी को कब होता है, विशेष करके लड़कियों के लिए, जब उसका पति वो जो कुछ कहती है उसी के अनुसार में चलने के लिए राजी है, निहोरा कर रहा हो, विनती कर रहा हो वैसा करने के, तो हृदय में ऐसा आनंद आएगा जो गले का हार सिर में, सिर का कमर में, पैर में, कहाँ कहाँ कौन, ये सोलह जो श्रृंगार इत्यादि हैं, अंगों के हैं, अलंकारों के हैं, कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ ऐसे हैं, उलट पुलट करके उसमें बन रही। जल्दी से सोलह श्रृंगार कीजिए और नैनों में क्यों काजल, काजल करने के लिए क्यों कर रही, इसका भी एक कारण, पहले रो रही थी जो अभी तक नहीं आए और रोने से सब धुल गए हैं, इसलिए वो आंख में काजर काजर नहीं, अब पुनः इसको डालो आंख में, ये काली सी चीज क्यों डालने का, आंखें तो सबसे अंगों में श्रेष्ठ है ना, यदि आंख नहीं है तो अंधार, और उसमें ये कालिक पोतना, अलकतरा जैसा पोतना, ये क्या बात है, नहीं ये श्याम का रंग मानो आंखों में रख करके श्याम ही को ये रख रहे हैं, ये भाव इसमें है। ये काजर अभी लाओ और जल्दी से उठ करके पधारिए। इस प्रकार से सखियां सब समझा लें, जब किसी तरह से नहीं समझेंगी तो सब सखियां जोड़ कर उनको उठा करके बैठा देंगी और जबरदस्ती श्याम भी चढ़ करके उनको झूला झूलाने लगे। वो कीर्तन क्या है जो दामोदर गाता है? हाँ, जरा याद है आपको? बस बोलो 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 जल्दी से।
झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। हाँ वृंदा झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। कैची छाई हरी आली आली कुंजन में, कैची छाई हरी आली आली कुंजन में, ओ कैची छाई हरी आली आली झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले नंद के दुलारो उत भान की दुलारी, नंद के दुलारो उत भान की दुलारी, इस नंद के दुलारो उत भान की दुलारी, जोड़ी लागे अति प्यारी बसी नैननों में, जोड़ी झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला यमुना के कुल परी सुरंग दुकुल, यमुना के कुल परी सुरंग दुकुल, कैसे खिल रहे फूल आली कदमनों में, कैसे खिल रहे कैसे खिल रहे फूल आली कदमनों में, कैसे झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला
झूले राधा दामोदर वृंदावन।
हाँ कैची छाई हरी आली आली कुंजन में, कैची छाई हरी आली आली दामिनी के संग
गौर श्याम रंग धन दामिनी के रंग
भाई आखी आया पंगा भरी भरी मनो में भरी गच्छा भी भरी मनो में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला राधे मुख और नैन श्याम के चको राधे मुख और नैन
श्याम के चको
राधे मुख और नैन श्याम के चको राधे मुख गोपिन प्रेम पसी चरण में सखी चरण में वो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला हाँ कैसी छाई हरी आली आली कुंजन में कैसी छाई हरी छाई हरी आली आली कौन जानो में गची छाई हरी
आली
झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में झूला झूले
राधा ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्त कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव प्रणमामि हरि प्रिये। हे देवी काकू भर गद गदयाद्य वाचा जाची निपत्त भूवि दंडवत उद्भटार्ती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं विधे। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डंजा गुडरुचि संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरं। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च पामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां चरणम्। नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्च बदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्पापी।
श्री बृहद् भगवतामृत पंचम अध्याय, ये गोप कुमार जी से, गोप कुमार जी द्वारका में पहुंचे हैं सर। नारद जी उद्धव जी हैं और ये हैं, तीनों से विचार चल रहा है। नारद जी इनको उपदेश दे रहे हैं, उसका कारण बतला रहे हैं। ये आपको द्वारकापुरी तक में भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्यों, इसी का कारण वो बतला रहे हैं। जो लोग ब्रजरस रसिक वैष्णव की कथाएं सुनते हैं उनको मुक्ति की तो बात ही क्या है, वैकुंठ उससे ऊपर, साकेत लोग उससे भी ऊपर, द्वारका और मथुरा की ही बातें नहीं सुहाती है और उनको कहीं भी रुचि नहीं लगती। यही उनको ये बतला रहे हैं, तुम्हारा मंत्र ही ऐसा था जो ब्रज से संबंधित है, इसलिए तुमको कहीं भी अच्छा नहीं लगा। और मैं शपथ खा करके, शपथ लेकर के मैं कह रहा हूं, द्वारकापुरी में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, ये समझ रखो। वैकुंठ में तुमसे हमारी भेंट हुई किंतु तुमको पूरा तथ्य नहीं बतलाए, इसलिए कि लक्ष्मी जी हैं उनको सुन करके दुख होगा और वो बिगड़ जाए, क्यों, उनका एक भाव नित्य स्थायी भाव हो चुका है, वो उसके अतिरिक्त वो नहीं जाएंगे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगेगा। द्वारकापुरी में भी रह करके रुक्मिणी और सत्यभामा के प्रेम को भी यदि मैं बतलाऊं जैसे इससे काम नहीं चलेगा तो रुक्मिणी सत्यभामा भी बिगड़ जाएंगे। केवल यही एक व्यक्ति हैं उद्धव जी जो ये नहीं बिगड़े, क्योंकि ये ब्रज का भाव जानते हैं, ब्रज की विशेषताओं को वो समझते हैं, इसलिए। एक बात और सिद्धांत की बातें बतलाता हूँ, क्या, जब प्रभु भौम जगत में, भौम वृंदावन में जब प्रकट लीला करते हैं उस समय वैकुंठ नाथ से लेकर जितने भी अवतार हैं, प्रकाश हैं, सब उनके अंदर में उपस्थित हो जाते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी वैकुंठ में वैकुंठ नाथ के दर्शन नहीं होते। तुम जब था गोप कुमार, जबकि वहाँ पर वैकुंठ लोक में, तो कभी कभी तुम बहुत दुखी हो जाता था, उनके दर्शन नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि उस समय में कृष्ण आए हैं, तो वहाँ के लिए कितना समय होगा, यहाँ के लिए 100 वर्ष, 125 वर्ष कृष्ण इस जगत में, तो वहाँ 125 वर्ष वहाँ के लिए कितना होगा, एक सेकंड भी, तो वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रहना भक्तों को अखरता है ने? इसलिए उनको नहीं देखते हैं खोजने पर, किंतु उस समय आए हुए हैं यहाँ। उसी तरह से सभी अवतारों के लिए समझना चाहिए, इसलिए कृष्ण के साथ में समस्त जितने भी प्रकाश अवतार, मन्वंतर और जुगावतार इत्यादि सब उनके अंतर्ग में हैं। विशेष करके 24 जो भगवान के अवतार हैं वो भी कृष्ण के अंदर में हैं। इसलिए कृष्ण को कोई वैकुंठनाथ, कोई मूल नारायण, कोई नारायण, कोई नृसिंहदेव, कोई वामनदेव, कोई त्रिविक्रम, कोई कुछ, इस रूप में उनकी प्रार्थना स्तव स्तुति करते हैं और सबको वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें सभी कुछ हैं। किंतु वो वहीं तक नहीं है, वे गोलोक गोलोक के अधिपति हैं। उनकी पूजा करने से, उनका नाम करने से सबका हो जाता है कल्याण। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण में जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, सब प्रकार की विभूतियां जो कि और नान्य अवतारों में नारायण में है, राम में है, और में समस्त जितने लोगों की कृपालुता है, सुंदरता है, उनकी महिमा है, उनकी लीला माधुरी है, शोभा और भक्तों की वश्यता, प्रेम के वश में हो जाते हैं, भक्त वात्सल्य, ये पराकाष्ठा रूप में है भगवान के अवतारों में, वो पूर्ण रूप में और कृष्ण में पराकाष्ठा रूप में है। विशेष करके वृंदावन में पराकाष्ठा, द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वहाँ पर पूर्णतम ब्रज में, और इसको इस प्रकार से भी कहा जाएगा, वैकुंठ में पूर्ण, द्वारका मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम, ये सभी चीज़ें। नारायण भी मुक्ति दे देंगे, राम भी मुक्ति दे देंगे, भगवान के अवतार लोग मुक्ति दे देंगे, किंतु मार करके प्रेम नहीं देंगे, किंतु कृष्ण क्या करते हैं, प्रेम भी दे दे, ये विशेष उनमें है। रामचंद्र जी ने रावण युद्ध में या और सब असुरों को जो मारा, उन्होंने उनको मुक्ति दी चार प्रकार की, और जो लोग भगवान का भजन किया उनको क्या देंगे, उनको प्रेम दिया, उनको प्रेम दे सकते हैं, किंतु मार करके नहीं। और कृष्ण मार करके भी दे देंगे तो वो मुक्ति से ऊपर दे देंगे, प्रेम दे देंगे, जैसे पूतना है और सब लोग, इनकी विशेषता है। इसलिए ये सब चीज़ें कृपालिता, विभूति, सुंदरता, महिमा, लीला माधुरी इत्यादि, भक्त वात्सल्य परम पराकाष्ठा में ही प्रकटित होती है। एक ही तत्व, जैसे द्वितीया के चांद से प्रकाश तो आरंभ होगा किंतु पूरा प्रकाश नहीं आएगा, और पूर्णिमा का चांद से, तो ये चांद दो नहीं है, एक ही है। एंगल ऑफ विजन से प्रकाश का तारतम्य है। चांद कभी भी एक एक दो तीन चार पांच कलाएं उसमें नहीं है, सब समय पूर्ण है, किंतु जो दृष्टा है यहां से देख रहा है छाया इत्यादि के वजह से उसमें कलाएं दिख पड़ती हैं, किंतु उसमें कला फला नहीं है। हमने पहले दिन बतलाया था, भागवत में ऐसा लिखा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसया पाय तप साध्य लेभे गतिं धातु उचितं ततो अन्यम कंगवा दयालु शरणम ब्रज। अहो, बड़े आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं, उतना उनको जान से मारने के लिए गई, बाल घातनी थी, रुधिर रक्त बच्चों का पान करती थी, बड़ी क्रूर थी, हिंसक थी, माता का वेश बनाया तो उसको धात्री उचित प्रेम की गति दी, ऐसा कौन दयालु होगा। अब यहाँ पर यह विचार करके कहा जा रहा है, भक्तों को इसे क्या सीखना है, धात्री की गति जिसको चाहिए या मुक्ति की जिसकी अभिलाषा है वो इस पर विचार करेंगे। भक्त लोग क्या विचार करते हैं, हमारे भजन साधन में सहायक होकर के हमको कैसी